Hare Krishna, this lecture on Prabhupada Leelamrit given in Dwarka Temple, New Delhi on 19th March 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
Dabhakata charan reno bhajan anukola bhakata seva param siddhi premlati karamola bhakata seva param siddhi premlati karamola Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Madhava Tithi Bhakati Janani Yatan Palan Kari Madhavatiti Bhakati Janani Yatane Palan Kari Krishna Vasati Vasati Boli Paramo Adar Bari Krishna Vasati Vasati Boli Paramo Adar Bari Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Gauramara Ye Sabustane Karala Brahman Range Gauramara Sabstane Karala Brahman Range Se Sabstane Hari Bhami Pranai Bhakat Sange Se Sabstane Hari Bhami Pranai Bhakat Sange Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Mridanga Vada Shunite Mana Avasar Sadayache Mridanga Vada Sunita Mana Avasara Sadayache Gaur Vihita Kirtana Shuni Ananda He Dayanache Gaur Vihita Kirtana Shuni Ananda He Dayanache Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Yugala Murti Dekhiya Mora Param Ananda Hai Yugala Murti Dekhiya Mora Param Ananda Hai Prasad Seva Karite Hai Sakal Prapanch Jai Prasad Seva Karite Hai Sakal Prapanch Jai Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajan Anukula ते दिन ग्रहे भजन देखी ग्रह तगोलुक भाए। ते दिन ग्रहे भजन देखी ग्रह तगोलुक भाए। चरण सिंधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिंधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। गौर प्रियाए शक सेवन जीवन सार्थक मानी। गौर प्रियाए शक सेवन जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम से दे प्रेम लति कर मोला। भक्त सेवा परम से दे प्रेम लति कर मोला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय रुक्मिणी द्वाकाधीश रुक्मिणी द्वाकाधीश रुक्मिणी द्वाकाधीश। जय रुक्मिणी द्वाकाधीश जय रुक्मिणी द्वाकाधीश रुक्मिणी द्वाकाधीश रुक्मिणी द्वाकाधीश। जय रुक्मिणी द्वाकाधीश जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरे कृष्णा श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय पंचतत्व गौर निताय की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय प्रभुपाद लीला मृत ग्रंथ की जय अमला एकादशी महोत्सव की जय निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त की चरण रेणु प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद लीलामृत से अध्ययन करते हैं और उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग प्रभुपाद लीलामृत सुनिएगा ध्यानपूर्वक बैठकर प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के बारे में। ओम ज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति शब्दकांतिकं वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में प्रभुपाद लीलामृत के अध्याय 10 से पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आवश्यकता की ये महत्वपूर्ण घड़ी। तो ये प्रकरण 10 बोला जाता है श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रथम स्कंद में। तो यहाँ पर पिछली बार हम पढ़ चुके हैं पिछली एकादशी में कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में आकर रहते हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा की जा रही है। जुलाई 1962 में भक्ति वेदांत स्वामी वंशी गोपाल जी मंदिर के अपने आवास को बदलकर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है राधा दामोदर मंदिर में आने से पहले वंशी गोपाल मंदिर में रहा करते थे। तो आप में से कितने लोगों ने राधा दामोदर मंदिर देखा है? काफी सारे लोगों ने देखा है, कईयों ने नहीं देखा। तो राधा दामोदर मंदिर जो है वो जीव गोस्वामी के विग्रह है, राधा दामोदर उनके लिए स्थापित मंदिर है। और वहां पर और भी आचार्यों के 4 विग्रह हैं और सनातन गोस्वामी का एक स्पेशल शिला, गोवर्धन शिला भी वहां पर है, जो कि सनातन गोस्वामी जब वृद्ध अवस्था में परिक्रमा किया करते थे गोवर्धन की, तो भगवान जो है वो चाहते थे कि मेरा भक्त जो है कष्ट ना उठाए। भक्त तो भगवान चाहते हैं भक्त कष्ट ना उठाए, लेकिन भक्त स्वतः अपनी इच्छा से कष्ट उठाता है, उसी को तपस्या कहते हैं। कोई पूछे तपस्या का मतलब क्या है, तो तपस्या का अर्थ है जब ट्रबल्स टेकन बाय अवर विल, हम अपनी इच्छा से जब मुश्किलें लेते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे सुबह जल्दी उठना भक्त को अच्छा नहीं लगता, हर एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उठना, तो ये तपस्या है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आदत हो गई है रोज सुबह 4 बजे अपने आप ही आंख खुल जाती है, कह रहा जी 3 बजे खुल जाती है, अब तो 10 साल हो गए हैं, तो अभी वो तपस्या में काउंट नहीं होगा। वो चीज जिसके भक्त को करने में कष्ट हो रहा है ना, उसको आदत है कि वो चप्पल पहन के मंदिर आता है, लेकिन वो नंगे पैर आ रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो वो तपस्या है। लेकिन हाँ, वो नंगे पैर ही चलता है वृंदावन में, जी हमें तो आदत हो गई है 10 सालों में, तो फिर वो तपस्या नहीं है। तो जहां पर तपस्या वही कहलाएगी जहां पर हर पल कष्ट हो रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा स्वतः अपनी इच्छा से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कष्ट है वो तपस्या है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी भी अपनी वृद्ध अवस्था में परिक्रमा किया करते थे और भगवान आकर उनको कई बार स्वप्न में बोले कि परिक्रमा मत करो, तो उन्होंने कहा भगवान मेरा प्राण चला जाए लेकिन मैं ये अपनी परिक्रमाएं बंद नहीं कर सकता हूं। तो एक दिन भगवान जो है आते हैं एक छोटे ग्वाल बाल का रूप लेकर और उनको एक शिला प्रदान करते हैं जिस पर उनके चरण चिन्ह है, उनकी गाय का पैर का निशान है, खुर का निशान और उनकी लाठी का निशान है। और उन्होंने कहा कि तुम अगर इस शिला की 4 परिक्रमा करोगे तो तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो आज भी कई भक्त जाते हैं और 4 परिक्रमा करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले जी हमें भी फल मिल गया गोवर्धन परिक्रमा का। तो एक्चुअली वो किस अवस्था में था, जब वो 80-90 साल की अवस्था में बेहोश होकर गिर जाते थे, डेली परिक्रमा करते थे, डेली, अभी नहीं महीने में एक बार या साल में एक बार, डेली परिक्रमा करते थे 90 साल की अवस्था में, डेली का नियम है पिछले 40 साल से। तो ऐसी अवस्था में जब वो बेहोश होकर गिर रहे हैं उस समय उनको कहा कि तुम 4 परिक्रमा कर लो, वो हमारे लिए नहीं है, हाँ हम जा सकते हैं 4 कर सकते हैं तो हमको भी थोड़ी कृपा मिल जाएगी, लेकिन जो है गोवर्धन का आप छोटे शॉर्टकट है तो वो नहीं है शॉर्टकट, उसके लिए तो आपको परिक्रमा स्वतः अपनी इच्छा से कष्ट झेलने पड़ेंगे, तब भक्ति की प्राप्त होती है आज। तो इस तरह से प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं कहाँ रुकूं, ऐसे ऐसा निवास स्थान वृंदावन में जहां मुझे श्रेष्ठतम भक्ति का वातावरण प्राप्त हो। तो यहाँ पर बताया कि वंशी गोपाल मंदिर में वो रहते थे, लेकिन सदा उनकी इच्छा थी कि मैं राधा दामोदर मंदिर में रहूं, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सभी भक्ति सिद्धांत महाराज की पुष्प समाधि और अनेकों भक्तों की समाधि है वहां पर, तो इतना सुंदर वातावरण और कहीं नहीं मिल सकता था। कहते हैं 3 वर्ष से वे राधा दामोदर कमरों के लिए 5 रुपए प्रति मास की दर से किराया और उनकी व्यापक मरम्मत के लिए खर्च दे रहे थे, मतलब 5 रुपए महीना भी देते थे कि आप ये राधा दामोदर मंदिर का पत्थर लगाओ, इसको बढ़िया से बनाओ, क्योंकि बाद में मुझे इसमें आके रहना है। अब मुख्य कमरों में बिजली और पंखा लग गया था, दीवारों पर चिकना प्लास्टर और पेंटिंग हो गई थी, कमरा 15 फुट लंबा 7 फुट चौड़ा, कितना बड़ा 15 फुट लंबा 7 फुट, बस ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो पता नहीं 4 BHK 3 BHK चक्कर में घूम रहे हैं ना, जरूरत ही नहीं उसकी। इतने में ही प्रभुपाद जी ने क्या लिख दिया पता है, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के 3 स्कंद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए इतने से कमरे के अंदर ही, और 6 साल आपको 6 मिनट रुक दिया जाए ना तो आपको घुटन होने लगेगी, और अकेले, ना परिवार, ना ही उसमें कोई व्यक्ति है, ना कोई मित्रगण है, ना कोई भक्तगण है, सिर्फ अकेले वो और उनके आचार्य, आचार्यगण है उनके साथ में। कमरा 15 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा था, दीवारों में प्लास्टर हो गया था, फर्श विभिन्न आकार की चौकोर बलुई पट्टियों से बना था, ठीक वैसे ही पट्टियां थी जैसे रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जड़ी थी। कमरे के सामने में एक छोटी सी नीचे डेस्क थी, एक कुश की बनी चटाई थी, सोने के लिए लकड़ी के पाए पट्टियों वाली रस्सियों से बुनी एक चारपाई। कमरे से वैसा दृश्य नहीं दिखाई देता जैसा केशी घाट से मिलता था, तो अभी कमरे के अंदर आ गए थे तो यहाँ पर वैसा दृश्य नहीं मिलता था जैसा केशी घाट पर बैठकर श्रील प्रभुपाद जी को दृश्य दर्शन होता था, वैसा दर्शन यहाँ से नहीं हो रहा है। पास पड़ोस उतना शांत नहीं था, लेकिन अब अपने कमरे से बाहर जाए बिना भी वे मंदिर में झांक सकते थे और वेदी का कुछ भाग उस पर विराजमान काले संगमरमर के बने 4 फुट ऊंचे वृंदावन चंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण के उस 6 विग्रह का दर्शन कर सकते थे जिसकी आराधना सैकड़ों साल पूर्व कृष्णदास कविराज जी ने भी की थी। तो वहां पर एक और मंदिर है, कौन सा, उसी में एक और विग्रह है जिसका नाम है श्री राधा कृष्ण वृंदावन चंद्र। क्या नाम है? राधा वृंदावन चंद्र। किसके विग्रह है? अभी बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो चैतन्य चरितामृत लिखने वाले जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है वो वंदन करते थे, पूजा करते थे राधा वृंदावन चंद्र। और ये थे राधा दामोदर जीव गोस्वामी के। और भी वहां पर 2 विग्रह और है, राधा कौन से है बता सकते हैं कोई? और 2 विग्रह हैं, राधा चहल चिकन और राधा विनोद। तो इस तरह से 4 विग्रह हैं जिनका दर्शन प्रभुपाद जी को अपने कमरे से होता था। अभी केशी घाट की यमुना नदी का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उस कमरे में वातावरण ऐसा है कि सामने से विग्रह दिखता था और खिड़की खोल दो तो सामने से उनको रूप गोस्वामी की समाधि और रूप गोस्वामी की भजन कुटीर का दर्शन होता था। मुख्य कमरा 10 फुट लंबे एक बरामदे द्वारा भोजनालय से जुड़ा, जिसके सामने एक आंगन था और अपने भोजनालय से वे रूप गोस्वामी की समाधि देख सकते थे। तो जब वो प्रसाद बनाते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे, तो उस समय जो था उनको समाधि का दर्शन होता था। तो कुछ भक्त बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी उस स्थान में रहा करते थे राधा दामोदर मंदिर में, हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज ने एक बुक भी लिखी है, प्रभुपाद एट राधा दामोदर एक किताब है, तो उसमें उनका पूरा वर्णन है कि राधा दामोदर में उन्होंने एक एक दिन कैसे काटा है। अब जरा सभी भक्त चिंतन करके देखें कि 15 फुट बाय 7 फुट का एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में हमको रखा जाए, कोई भक्त नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है, सिर्फ मंदिर के पुजारी हैं, वो भी आते हैं पूजा करते हैं और चले जाते हैं, वार्तालाप नहीं करते क्योंकि भक्त संग तो है नहीं, कोई भक्ति जानता नहीं है। और अपने गुरु की आज्ञा पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी उस कमरे में बैठ के बस रात दिन ट्रांसलेशन करते थे। और सुबह एक भक्त बता रहे थे जिनका बिल्कुल मंदिर के साथ ही में घर था, 3री मंजिल पे रहते थे, वो कहते थे कि सुबह सुबह कुछ रोने की ध्वनि सुनाई देती थी, 5 बजे के करीब रोना आता था, जैसे मंगला आरती होती है तो हमारे यहाँ शंख बजता है, तो ऐसे ही कभी कभी मंगला आरती से पूर्व 4-4:30 बजे रोने की ध्वनि सुनाई देती थी। तो बोले कि हमें समझ नहीं आता था कि कौन रोता है, अब रात में उठकर जाना, देखना अंधेरे में, वृंदावन है आज तो फिर भी बदल गया, 50 साल पहले तो बहुत ही अंधेरा था, वहां जाकर देखना कि कौन रो रहा है बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे स्थिति में वो भक्त बोले, एक दिन मैंने जानबूझकर अपनी लाइट वगैरह इस्तेमाल कर और मैं पहुंच गया देखने के लिए, तो देखा पता चला कि श्रील प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी जो थे वो झाड़ू लगाया करते थे, मंदिर में भक्त आएंगे ना उनके लिए सफाई, और रूप गोस्वामी की समाधि उसे साफ किया करते थे कि रूप गोस्वामी आएंगे अभी यहाँ बैठेंगे, भजन कुटीर साफ करेंगे उसमें बैठेंगे, जबकि रूप गोस्वामी के गए हुए 500 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी वो आज उनके लिए चटाई साफ कर रहे हैं। हम तो साक्षात वैष्णव है ना, उनके लिए भी व्यास आसन साफ नहीं करते, टेबल साफ नहीं करते, ठीक है आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे, है ना। भक्तों को तैयार तत्पर होना चाहिए कृष्ण कथा सुनने के लिए ना, जो व्यास आसन है उस पे जो भी स्पीकर हो, एनीबॉडी कोई भी हो, आने से पहले सभी भक्तों को उस स्थान की तैयारी करनी चाहिए, आके हमें कृष्ण कथा मिलेगी। या भगवान के मंदिर में अगर पुष्प पड़े हो और हम जल्दी आ गए तो अपनी माला फिनिश कर रहे होते, जल्दी जल्दी मेरी माला हो जाए ताकि मैं भगवत धाम चला जाऊं, बाकी सारे नरक में जाए, मुझे क्या मतलब, आई एम सेल्फ सेंटर्ड, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज से पूछा गया आपकी इच्छा क्या है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा मेरी ये इच्छा है कि मुझे कोई इच्छा न रहे, ये मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रहलाद कुछ तो मांगो, तो नरसिंह भगवान ने जब बार बार कहा तो प्रहलाद ने कहा हाँ भगवान मेरी एक इच्छा है कि जितने भी मेरे असुर भक्त जो मैं बना रहा हूं, असुरों के बच्चे और असुर वर्यम मेरे पिता, ये सब के सब भगवत धाम जाए, उसके बाद मेरा नंबर आए, है ना। हम क्या चाहते हैं, मायापुर धाम जाए, वृंदावन धाम जाए, तो सबसे पहले हम जाए, बाकी जाए ना जाए हमें मतलब नहीं है, है कि नहीं है। तो आप सोचिए हम परंपरा में प्रहलाद महाराज की और खुद अकेले जाना चाहते हैं हर एक जगह, आप सोचिए कि इस तरह से हमें अपने भक्तों से, अपने आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो रूप गोस्वामी जो 500 वर्ष पूर्व थे उनके लिए प्रार्थना करते थे कि आएंगे बैठेंगे और फिर उनसे वार्तालाप करते थे। भक्ति महानिधि स्वामी महाराज ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है 64 समाधि, आई थिंक 64 समाधि। उस पुस्तक में वो कहते हैं कि समाधि जो है ये वैष्णव की दिव्य शरीर को स्थापित किया जाता है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पंच तत्व गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वहां पर वैष्णव को स्थापित किया जाता है, उनका शरीर स्थापित है। ये कोई नॉर्मल ग्रेवयार्ड नहीं है, जैसे कब्र होती है ना, वो नहीं है। वैष्णव की समाधि वैष्णव दिव्य स्थली होती है, वैष्णव दिव्य स्थली। तो वैष्णव दिव्य स्थली पर व्यक्ति को जाकर प्रणाम करना चाहिए, जप करना चाहिए। जब आपका जप में मन ना लगे तो ऐसे स्थानों पर जाकर भक्तों के समूह में जाएं, बैठें, जप करें, प्रार्थना करें। तो प्रभुपाद जी ने अपने अपने जीवन चरित्र से सिखाया कि प्रभुपाद प्रार्थना करते थे कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते हैं कि मैं विदेशी भाषा जानता हूं तो मैं विदेश पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करूं, लेकिन प्रचार करने के लिए मेरे पास ना तो धन है, ना मेरी कोई लिंक है, जान पहचान है। मैं तो बस क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आंसू हैं, रो सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि कब वो दिन आएगा कृष्ण आपकी कृपा होगी कि मैं पाश्चात्य देशों में जाकर अपने गुरु की वाणी को सिद्ध करूंगा। और वो रूप गोस्वामी से कहते थे। तो एक दिन जब रोज 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 प्रार्थना करते थे तो प्रभुपाद जी के भक्त बताते हैं कि एक दिन रूप गोस्वामी आए समाधि से बाहर निकल के। आपको लगेगा अरे ये तो लोटपोट की कथा है, चंपक की कथा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर कोई भक्त सच में वैष्णव बनना चाहता है ना, वो बाहरी वातावरण से साज सज्जा से कपड़े से घूमने फिरने से उसे फुर्सत मिल जाए तो वो इन चीजों के ऊपर डेप्थ में जाकर सोचे। इसके अंदर अगर कोई ध्यान पूर्वक देखे ना तो सारा शास्त्र यहाँ इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। क्या प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था घूमने फिरने का? प्रभुपाद जी भी तो घूम सकते थे। प्रभुपाद जी 6 साल वृंदावन के उस कमरे में, आपने सुना कभी कि प्रभुपाद जी जो है वहां पर भक्त बना लिए और फिर घूमने के लिए निकल गए, कभी जा रहे हैं कहीं कभी कहीं? नहीं, उसी स्थान में बैठकर शास्त्र के अंदर ही अंदर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लड़ाई करने से पहले लड़ाई की तैयारी जरूरी है, बॉम्ब मारने से पहले मुझे शास्त्र तैयार करने हैं शस्त्र के रूप में, है ना, शस्त्र तैयार होंगे तब मैं जाकर फायर कर पाऊंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी तैयारी कर रहे हैं और उस कमरे में और वो प्रार्थना कर रहे हैं और रूप गोस्वामी आए उनसे बात करने के लिए। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता भगवान से बात करने के लिए, आचार्यों से बात करने के लिए। हमारे पास अपने इतने एंगेजमेंट्स होते हैं, अपना घूमना है, अपना फिरना है, अपने कपड़े, अपना घर, अपनी चीजें, हमारे पास कहाँ वक्त है आचार्यों से बात करने का। और रूप गोस्वामी ने आकर कहा कि भक्ति वेदांत घबराओ मत, जल्दी वो समय आने वाला है जब तुम विदेश जाओगे और जाकर क्या करोगे, हरि नाम का प्रचार करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर एक बुक है हरि नाम चिंतामणि, इसमें से हम सोच रहे थे कुछ पढ़ना चाहिए। तो इसमें लिखा है व्यक्ति को संप्रदाय के ही आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अकेले वृंदावन में रहते थे, तो मैं सोच रहा था कि कभी कोई व्यक्ति अगर वृंदावन में रहे तो अनेकों लोग मिलते हैं। जैसे कई भक्त उड़ीसा जाते हैं या मायापुर जाते हैं या वृंदावन जाते हैं या ब्रज मंडल घूमने जाते हैं, तो वहां के लोगों से ना कथा सुनने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बैठ जाते हैं सुनने लगते हैं और फिर कहते हैं अरे हमारे इस्कॉन वाले तो जानते ही नहीं ये बात, और वो कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं संप्रदाय गुरु गणे शिक्षा गुरु जन अन्य मति पंडित रे शिक्षा नाही मान। आध्यात्मिक गुरु संप्रदाय के आदि शिक्षा गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, वे अन्य दर्शन के किसी ज्ञानी पंडित की शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करते हैं। कोई बोले भी तो हमें अनुसरण नहीं करना, चल ठीक है सुन लिया, प्रेम पूर्वक हम वैष्णव हैं सुन लेना चाहिए, लेकिन पालन उसी का करेंगे जो संप्रदाय के आदि शिक्षा गुरु। तो हमारी संप्रदाय जो है इस्कॉन, इसके आदि शिक्षा गुरु कौन है? प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, उनके अनुसरण करना है और कुछ नहीं। अभी आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आपने श्रील प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़े हैं या सारे प्रवचन सुने, या कितने लोग रोज श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुनते हैं, रोज रोज? वेरी नाइस, वेरी फ्यू, बहुत कम है ना। तो सोचिए आप, और हमारे आदि शिक्षा गुरु के अलावा हम दुनिया जहान से डायरेक्शन ले रहे हैं वो प्रभुपाद जी से कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं। तो जो प्रभुपाद जी से डायरेक्शन ले रहे हैं वही व्यक्ति क्या कर पाएगा, अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। कहते हैं,
गुरु के समान जीव न जानी बे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण प्रेष्ठा नित्य प्रभु।
किसी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य जीव है। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, वे भगवान कृष्ण का सर्व अधिक प्रिय भक्त और नित्य प्रभु है। तो इस तरह से बताया गया कि गुरु को सामान्य जीव नहीं मानना चाहिए। तो ये नहीं खाली कि गुरु मतलब हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, हमारी आचार्य प्रणाली में कोई सामान्य नहीं है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनसे जाकर गिड़गिड़ाना चाहिए उनके आगे कि आप हम पर क्या करिए, कृपा करिए, और फिर वो लोग कृपा करेंगे हमारे ऊपर। उनसे क्या बोलना चाहिए,
गुरुर चरण देन्य लाइबे शरण, करीबे गुरुर सदा प्रिय आचरण।
उसे विनम्रता पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, उसे सदैव ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हो। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे आध्यात्मिक गुरु को क्या हो, दुख हो, कष्ट हो, है ना। आप ही देखिए, कई बार देखते हैं स्थिति बदलती जा रही है, जितने भी भक्त अब गुरुजनों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, वो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। कोई ये नहीं पूछता कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हम कैसे प्रगति कर सकते हैं। प्रश्न होने चाहिए जो कि आध्यात्मिक प्रगति करें। घर में घर की घरेलू परेशानियां हैं वो तो आएंगी आएंगे, आपके प्रारब्धों के अनुसार उन्हें कोई नहीं टाल सकता। आप सोचे मैं माला करूंगा ध्यानपूर्वक तो मेरे प्रारब्ध कट जाएंगे, तो ये गलत धारणा है। और उस माला का आप जो है ना क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। हरि नाम तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है, प्रारब्ध काटने के लिए थोड़ी है। काट दे तो कृष्ण कृपा। एक बार नारद मुनि जब अपने पूर्व जन्म में, नारद मुनि बनने से पूर्व जब वो एक दासी पुत्र थे और उनकी माता का देह त्याग होने के बाद में जब वो जंगलों में जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं और गहरे जंगलों में पहुंच गए और बैठकर उनको एक मंत्र दिया गया था गुरु के द्वारा, उस मंत्र का वो ध्यान करने लगे और ध्यान करते 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 इतना गहरा वन था कि उसके अंदर कोई भी जीव जंतु तक दिखाई नहीं दे रहा था, इतना गहरा जंगल, जानवर जाने में भी घबराते थे। ऐसे जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या करी तो उनके हृदय में कृष्ण आए, उनके हृदय में आरा शास्त्र में वर्णन, कृष्ण उनके हृदय में आए और कुछ ही पल बाद कृष्ण अदृश्य हो गए। तो अब वो सोचने लगे कि कृष्ण अदृश्य हो गए, तो भक्तों ने सवाल पूछते हैं कि कैसे कृष्ण अदृश्य हो गए। तो हमारे वर्तमान आचार्य बताते हैं कि कृष्ण आपके हृदय में आएंगे अपनी इच्छा से। कोई ये नहीं कह सकता कि कृष्ण आएंगे ये करने से, कृष्ण आएंगे ये करने से। ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इससे वो आ जाए। हम शादी का कार्ड किसी को देते हैं ये सोचकर देते हैं कि हो सकता है इस पर वो आ जाए। अब आए ना आए वो तो उसकी इच्छा पर है कि नहीं है, जबरदस्ती तो नहीं कि पैरों में हथकड़ी डाल देंगे, वो बेड़ियां डाल देंगे, बोले आना पड़ेगा जी, इनविटेशन कार्ड दिया है। तो कृष्ण आपके जीवन में आएंगे, कृपा आपके जीवन में आएगी, ये निश्चित नहीं है। ये तो उनकी अहेतु की कृपा है, हेतु की नहीं, अहेतु की। इसीलिए बोला गया अगर हेतु की कृपा होती तो फिर ये कर लो तो ये मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अहेतु हो सकता है कुछ किए बिना एक बार हरे कृष्णा बोलने से कृपा मिल जाए, अरे इसको मिल गई। अहेतु की कृपा किसी को भी मिल सकती है, वो भगवान के ऊपर निर्भर है। तो नारद मुनि के हृदय में आए और फिर चले गए, वो नहीं आए, भगवान दोबारा उनको दर्शन नहीं हुआ। तो हमें एक सीखना चाहिए प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से कि किस तरह प्रभुपाद जो है वो रूप गोस्वामी से रोज प्रार्थना करते रहे। एक दिन नहीं दर्शन हुआ, दो दिन नहीं हुआ, तीन दिन, एक दिन आए रूप गोस्वामी और आकर उनको इंस्ट्रक्शन दिया। इसलिए बताते हैं ये स्थान वंशी गोपाल मंदिर के आवास से अच्छा था क्योंकि अब वो जीव गोस्वामी के मंदिर में रह रहे थे, जहां रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसे महान गोस्वामी एकत्रित हो चुके थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, भजन करते थे और कृष्ण भगवान चैतन्य के विषय में चर्चा करते थे। तो उनको क्या नजर आ रहा है कि अब यहाँ पर सारे के सारे आचार्य मिलकर प्रसाद ग्रहण कर, वो भोग ऑफरिंग कर रहे हैं, तो उनको दर्शन हो रहा है कि सब बैठे हैं, चर्चा चल रही है कि भाई भक्ति वेदांत को कहाँ भेजा जाए, इसको भेजना पड़ेगा पाश्चात्य देशों में तभी कुछ होगा, चैतन्य महाप्रभु ने हमको आदेश दिया था लेकिन हम तो ग्रंथों के अंदर रचना करने में रह गए, अब एक भक्त सेनापति आएगा बोला था तो आ गया, देखो अब इसको भेजना पड़ेगा। चर्चा चल रही है, प्रभुपा जी देख रहे हैं कि चलो मेरे बारे में प्लानिंग चल रही है कुछ ना कुछ।
मुक्त होगा। और श्रीमद् भागवत पर कार्य करने के लिए ये सर्वोत्तम स्थान था, और अब श्रील प्रभुपाद जी इसी स्थान में रहने लगे। रात्रि में 1 बजे जब कोई नहीं जागता होता और चारों ओर शांति रहती, तब भक्ति वेदांत स्वामी जग जाते और लिखने लग जाते। कितने बजे? रात को 1 बजे। आपको उठा दे तो कहेंगे अरे नींद तोड़ दी मेरी। क्योंकि वृंदावन में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वे प्राय लालटेन के प्रकाश में कार्य करते थे। किसके प्रकाश में? हमारे ऊपर तो इतनी तगड़ी लाइट लगा रखी है, फिर भी हम भक्त जो है मतलब भ्रमित हो चुके हैं पूर्ण रूप से। प्रकाश की कुछ किरणें बाहर बरामदे में भी पहुंच जाती, जबकि वे उसके प्रकाश में कमरे के अंदर काम करते रहते हैं। वो अंदर 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 काम करते रहते और कुछ कुछ किरणें आ जाती, तब उनको पता चलता ओह दिन हो गया। इतने ज्यादा उसके अंदर गहराई से डूबकर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। शांत वातावरण में जब वे लिखने के कार्य में लगे रहते तो कभी कभी पत्थर के फर्श की तरह शुष्क कोई मेढक उस पार के फर्श की दर से निकलकर सामने की दीवार में बनी सीमेंट की जाली में से कूदकर इस पार पहुंच जाता। तो मेढक दिखाई देते, टड़क टड़क कूद रहे मेढक उनके कमरे में, तो उनको दिखाई देते डिस्टर्ब करते, लेकिन वो डिस्टर्ब होते नहीं थे। कभी कोई छोटा चूहा खिड़की के पीछे से दौड़ता हुआ आता और भागकर दूसरी जगह छिप जाता। अन्यथा कमरे में पूर्ण और पवित्र शांति थी और वहां 6 गोस्वामियों की उपस्थिति में रहने की प्रेरणा बड़ी बलवती थी। सारे के सारे गोस्वामी वहां हैं इस बात की उनको प्रेरणा प्रभुपाद जी को रहती थी। खुले आंगन के ऊपर आकाश साफ दिखने वाले तारों से भरा होता। जब वे कार्य में लीन होते उस समय नगर में यदि कहीं से कोई आवाज सुनाई देती तो वे दूरी पर भौंकते हुए शायद किसी कुत्ते की आवाज होती। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आती थी रात के 1 बजे, और वो ट्रांसलेशन करते थे। 4 बजे सुबह मंदिर का पुजारी जो गर्भगृह के द्वार के निकट सोता था उठ जाता, बिजली जलाता, एक लंबी लाठी के से चमगादड़ों की शतेरों से खदेड़ देता। 5 बजे वे श्री विग्रहों को जगाता। तो 5 बजे आरती होती थी, मंगला आरती। वेदी के सामने के किवाड़ खोल देता और मंगला आरती आरंभ करता। दीप दिखाता जबकि मंदिर के कुछ निवासी भक्त इकट्ठे होकर भजन भी गाते, वाद्य यंत्र भी बजाते। प्राय कोई घंटा बजाने लगता और कोई घड़ियाल बजाने लग जाता। आंगन में कोई आवाज होती तो भक्ति विधान स्वामी की आवाज में तुरंत पहुंच जाती। घंटा घड़ियाल की आवाज उनके छोटे कमरे की दीवारों से टकराकर अचानक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती। अपने बैठने के स्थान से वेदी की बाईं ओर आसीन आसीन केवल वृंदावन चंद्र को देख सकते थे। अब जहां प्रभुपाद जी बैठे हैं, जहां उनका कमरा है, उसके साइड में खिड़की है। अगर वो खिड़की खोलो तो आप प्रभुपाद जी ऐसे करके देखें तो सिर्फ वृंदावन चंद्र दिखाई देते हैं, ना दामोदर, ना चैल चिकन, ना विनोद, कोई भगवान दिखाई नहीं देंगे उनको, सिर्फ राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन होता था। अपने बैठने के स्थान के वेदी के बाईं ओर आसीन केवल वृंदावन चंद्र को देख सकते। कभी कभी वे अपना काम रोक देते और शिव विग्रहों के दर्शन और उनकी आरती देखने के लिए आंगन में आ जाते थे। वेदी पर राधा और कृष्ण के शिव विग्रह आसीन थे, जिनकी आराधना सैकड़ों साल पहले जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्यों ने करी थी। 10 मिनट के बाद आरती करने और जल से पूर्ण शंख बजने के बाद पुजारी भक्तों के सिर पर शंख का पवित्र जल छिड़कता और इस तरह समारोह का अंत होता। श्रीमद् भागवत पर कुछ घंटे कार्य करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी अपने कमरे में बैठ जाते और जप करने लगते, और इसके बाद क्या करने लगते? भगवान के नामों का जप करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस तरह से जप करते। प्रातकालीन आकाश में हल्के नीले प्रकाश के फैलने और तारों के अस्त होने के साथ वृंदावन के निवासी शिव विग्रह के और गोस्वामी की समाधि के दर्शन के लिए आने लगते। तो वृंदावन में जो वासी है, ये वृंदावन वास का इच्छा है कि भक्त का दर्शन करने का, समाधि स्थलों पर जाने का इच्छा हो। लोग वृंदावन जाके भी सो जाते हैं। बोले जी, एक भक्त बोल रहे थे, मैं कहा आप यहाँ सो रहे हो? कह रहे जी धाम में तो ना सोने का भी दंडवत प्रणाम का फल मिलता है। मैं कहा तो आप दंडवत प्रणाम का फल लेने आए हो कि भगवान के दर्शन करने आए हो? तो इस तरह से भी भक्त करते हैं, आलसी वहां जाकर भी आलसी रहते हैं। इसीलिए उन भक्तों के साथ जाना चाहिए धाम दर्शन के लिए जो उत्साहित हो, उनके साथ ना जाएं जो आलसी हो, वो आपको भी सुलाएंगे खुद भी सुलाएंगे। अस्त होने के साथ वृंदावन के निवासी शिव विग्रहों के और गोस्वामी की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। वृद्ध महिलाएं लड़खड़ाती आवाज में क्या बोलती? जय राधे कहती, मंदिर में प्रवेश करती। भक्ति वेदांत स्वामी कमरे के किवाड़ खोलते तो उनका कमरा प्रकाश से भर जाता। कमरे की खिड़कियां आंगन में खुलती, लेकिन वे खिड़कियों की अपेक्षा दीवार में बनी सीमेंट की जालियां अधिक लगती थीं। आने जाने वाले उनमें से कमरे में आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनसे प्रकाश आता था। सवेरे के प्रकाश में कमरे का रूप साफ दिखाई देता। मेहराबदार छत ताजी पेंट की हुई दीवारें, मेहरा बाजार ताक पत्थर से जड़ा हुआ फर्श, भक्ति विदान स्वामी का पतला सन्यास दंडा गहरे केसरिया रंग की खादी में लिपटा हुआ कमरे के एक कोने में टिका रहता। एक खाने में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक चित्र रखा था और दूसरे में पुस्तक और पंडुलिपियों का ढेर था। कमरे के दो किवाड़ बंद होने पर भी मटमैल लगते थे और पूरा कमरा बाई ओर कुछ झुका हुआ लगता था। वह साज सज्जाहीन था लेकिन शांत था। कोई डेकोरेशन नहीं था लेकिन एक चीज थी, क्या? हमारे घर में सब कुछ होता है लेकिन एक चीज नहीं होती, क्या? शांति। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि शांति हो तो उसमें क्या क्या चीजें रखी थी उन्होंने बताइए, क्या क्या रखा हुआ है प्रभुपाद जी ने अपने कमरे में? भक्ति सिद्धांत महाराज का चित्र, मतलब अपने पर अपने गुरुदेव का चित्र। सबको अपने घर में गुरुदेव का, प्रभुपाद का एक चित्र रखना चाहिए। दूसरा, हाँ, ग्रंथ रखे हुए हैं, पांडुलिपियां, ग्रंथ रखे हुए हैं। तो जिस घर में ग्रंथ नहीं है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, ठीक है। और क्या रखा हुआ था? और उन्होंने अपने गुरु का जो डंडा था, सन्यास का डंडा रखा हुआ था, भोजन बनाने के लिए सामग्री रखी हुई थी और एक चारपाई थी, बस कोई ज्यादा साज सामान नहीं था। दोनों कमरों के बीच के बरामदे में बैठे हुए भक्ति विदान स्वामी प्राय आंगन, वेदी और शिव विग्रहों की ओर देखा करते थे। राधा दामोदर, वृंदावन चंद्र और राधा कृष्ण के अन्य कई श्री विग्रह दर्शकों के प्रतीक्षा में रहते। सवेरे की बेला में श्री विग्रह के किवाड़ खुले रहते क्योंकि लगातार दर्शकों की पंक्ति से मंदिर जन संगुल तीर्थ स्थान बन जाता था। तो तीर्थ स्थान कैसे बनता था, कैसे बनता था तीर्थ स्थान? लगातार दर्शकों की पंक्ति से। तो दर्शन से, भगवान के होने से तीर्थ स्थान नहीं बन रहा है, उन भक्तों से तीर्थ स्थान बनता है जहां भक्त जाते हैं। तो यहां पर एक चीज और पता चलती है कि अकेले कोई व्यक्ति अगर जा रहा है दर्शन करने के लिए तो बेकार हो गया ना, क्योंकि तीर्थ स्थान कब बना वो? जब वो भक्तों की पंक्तियों में भक्तों के साथ जा रहा है। अधिक देर तक नहीं रुकता और ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहिए। कुछ दर्शकों को कई मंदिरों में जाना होता था इसलिए वे जल्दी में होते। गरीब लोग, स्थानीय व्यवसायी लोग और रंगीन साड़ियों पहने हुए उनकी स्त्रियां, सभी भक्त जय हो जय हो जय राधे कहते वेदी की ओर जाते। शिव विग्रह का दर्शन करने के बाद दरवाजे से बाहर के आंगन में पहुंच जाते समाधियों का दर्शन करने के लिए। तो ये वृंदावन का मनोरम स्थल। यद्यपि वृंदावन में प्राचीन वैष्णव आचार्यों के सम्मान में सैकड़ों मंदिर नुमा छोटी समाधियां बनी थी, भक्ति वेदांत स्वामी उनमें से केवल, अभी इतनी सारी समाधियां हैं लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी कहां बैठते हैं, केवल जीव गोस्वामी, भक्ति वेदांत सरस्वती और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसी मुख्य समाधियों पर ही दर्शन करते। इसका मतलब कि हम इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, जो हमारी गुरु परंपरा प्रणाली है उसी में जाना चाहिए। मंदिर के आंगन के एक अलग क्षेत्र में भजन कुटीर और रूप गोस्वामी की समाधि थी। भक्ति विदान स्वामी प्राय रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जप के लिए बैठ जाते थे और क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मंदिर से निकलकर दर्शनार्थी रूप गोस्वामी की समाधि को दंडवत करने इस बाहरी क्षेत्र में आते रहते। अधिकतर तीर्थयात्री इसे राधा दामोदर मंदिर के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मानते और चाहे वे किसी अन्य जगह पूजा के लिए ना भी रुकते हो पर रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जरूर रुकते थे। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते थे और जय राधे कहते हुए प्रणाम करते या माला की थैली में हाथ डाले समाधि की परिक्रमा करते और हरे कृष्ण का जप करते रहते। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा और भक्तों के द्वारा। हम भक्त जो है इस प्रभुपाद जी के मोमेंट में हमें कहा जाता है रूपानुगा। क्या कहते हैं? रूपानुगा। रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी का अनुगमन करने वाले। लेकिन अगर हम दीक्षा प्रणाली से देखें तो हम रूप गोस्वामी की प्रणाली में नहीं आते। दीक्षा प्रणाली से देखें तो हम रूप गोस्वामी की प्रणाली में नहीं आते। हमारी अगर हम ऊपर जाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जितने भी आचार्य हुए हैं तो हम गदाधर पंडित की प्रणाली में आते हैं दीक्षा परंपरा से देखें। लेकिन हम बोलते हैं अपने आप को गदाधर अनुगा नहीं बोलते, हम अपने आप को बोलते हैं रूप अनुगा। और इस तरह से हमें समझना चाहिए कि रूप गोस्वामी को क्यों महान बताया गया, क्योंकि हम जो शिक्षाएं अपने जीवन में पालन करते हैं वो रूप गोस्वामी द्वारा दी गई है। तो इससे हमारी जो वैष्णव संप्रदाय प्रणाली है ये दीक्षा प्रणाली से ज्यादा शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। तो हमारे जीवन में जिनसे हम शिक्षाएं ग्रहण करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अन्यथा सब गड़बड़ है। तो रूप गोस्वामी को बार बार इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि हमारी जो परंपरा सिस्टम है इसे शिक्षा प्रणाली कहते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे वो भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा प्रणाली होने के कारण भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथदास बाबा जी महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उनसे उनका जीवन बदल रहा था, इसलिए उनको बोला जाता है जगन्नाथ बाबा जी महाराज। भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं बने, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने दीक्षा नहीं ली भक्ति विनोद ठाकुर से, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहीं और से दीक्षा ली, लेकिन क्योंकि वो अपनी भक्ति में उत्तम थे और रूप गोस्वामी की एक शिक्षाओं का पालन कर रहे थे और उन्हीं के समकालीन समय में थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे भक्ति सिद्धांत महाराज को बोला कि तुम दीक्षा जाओ किससे लो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि जब भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही में दीक्षा देने के योग्य थे, हमारे इस संप्रदाय में सप्त गोस्वामी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली को खोजा, तो फिर उनसे दीक्षा क्यों नहीं ली, बता सकते हैं कोई? क्यों भक्ति सिद्धांत महाराज ने दीक्षा अपने पिता से नहीं ली और उन्होंने कहा भी नहीं क्यों? इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने दीक्षा दे दी तो आने वाले समय में ये भी एक जो इतनी मुख्य प्रणाली है शिक्षा प्रणाली, ये टूट करके हो जाएगी जिसे कहते हैं पारिवारिक प्रणाली। पारिवारिक प्रणाली मतलब मैं ब्राह्मण था और मैं इस मंदिर की सेवा करता था, तो मेरा बेटा चाहे सिगरेट पिए बीड़ी पिए कुछ भी करे लेकिन वो भी गोस्वामी बन गया क्योंकि मैं गोस्वामी था, तो ये पारिवारिक प्रणाली होती है। तो दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक होता है ये पारिवारिक आचार्य और एक होता है शिक्षा आचार्य, आचार्य प्रणाली। तो आचार्य प्रणाली जो है हम लोग उसका पालन करते हैं, इसके अंदर हम शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे आने वाले समय में लोग गुमराह हो जाएंगे और वो बोलेंगे जी हमने इनसे दीक्षा ली है, अब आगे मेरा बेटा भी इन्हीं से दीक्षा लेगा या मैं अपने बेटे को दीक्षा दे दूंगा, तो ये सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। हमारी प्रणाली के अंदर शिक्षा प्रणाली इंपॉर्टेंट है, तो जो जिससे शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, अब कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जो दीक्षा गुरु है वो उसके शिक्षा गुरु भी होते हैं अगर उसका उनसे उतना संबंध स्थापित है, अन्यथा शिक्षा गुरु से संबंध स्थापित होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे भक्त जो थे वो श्रील प्रभुपाद जी से कितना प्रेम करते थे और श्रील प्रभुपाद अन्य लोगों से किस प्रकार प्रेम करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा प्रणाली में आते हैं हम लोग, इसलिए हमें गौड़िया भक्त भी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या आंदोलन है, जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा ते गुरु होइए तारे ही देश। अपने ही जगह में गुरु बनना है हर एक व्यक्ति को, लेकिन क्या करना है, सिर्फ कृष्ण का वर्णन करना है, जिससे भी मिले उसको कृष्ण के बारे में बताना है, तो अपने आप ही वो व्यक्ति उसका क्या बन जाएगा, शिक्षा गुरु बन जाएगा। भाई एक व्यक्ति को आप अगर बताते हैं कृष्ण के बारे में और उसका जीवन बदलता है तो आप उसके क्या बन गए, शिक्षा। तो हमारी आज्ञा से क्या बन जाओ, सब गुरु बन जाओ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और सबको कृष्ण के बारे में वर्णन करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में रहते थे तो वो जहां बॉम्बे का मंदिर है जुहू मंदिर, तो जिस स्थान पर उनका अपार्टमेंट था मंदिर राधा रास बिहारी मंदिर के बिल्कुल प्रांगण के बीच में था, तो प्रभुपाद जी जब हम विदेश से वापिस आ गए थे 1974 में इस्कॉन जुहू बन गया था, है ना, 72 में बन गया था, तो कंप्लीशन 75 में हुआ मेरे ख्याल, इनॉग्रेशन 2 में हो गया था इनॉग्रेशन। हाँ, तो प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट था उसमें प्रभुपाद जी रहते थे 71 में शायद, तो उस समय नीचे बच्चों के खेलने की आवाजें आती थी, बहुत सारे बच्चे खेलते थे फुटबॉल और आवाजें आती थी, ग्राउंड था वो बीच का किनारा था, हम समुद्री किनारा था, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि है ना ये जो सब भक्त बच्चे हैं ना इन सबको क्या करना चाहिए, इन सबको भक्त बनाना चाहिए, प्रभुपाद जी के मन में इच्छा थी इन सबको भक्त बनाना चाहिए। तो इनको भक्त बनाने का क्या तरीका है, इनके माँ बाप के पास जाओ और जाकर है ना उनसे बोलो कि है ना आप लोग हमारी जमीन पर आ जाइए, जो लोग किराए पे रहते हैं, भाई किराए का मकान बॉम्बे में बड़ा महंगा होता है, बोले किराए का मकान छोड़ दो हमारे मंदिर की जमीन में रहो और हमारे लिए क्या काम करो, मंदिर में जप करो, चार नियम पालन करो, मंदिर में सेवा करो और प्रसाद फ्री में ले लो, फुल टाइम डिवोटी बन जाओ और यहाँ रहो, हाँ आपके बच्चे भी भक्त बन जाएंगे और आपको भी किराया नहीं देना पड़ेगा। तो फिर प्रभुपाद जी जब ये बात सोच ही रहे थे फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये लोग लेकिन मानेंगे नहीं, ये लोग कौन है, कलयुग के जीव है, कलयुग के जीव जो है ना वो सोचते हैं कलयुग मतलब कल, जो भी करेंगे वो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो अगर हम इनको जाकर बोलेंगे कि आज भजन कर लो, भक्ति कर लो, तो बोलेंगे नहीं, हम तो कलयुग के जीव है ना, कल करेंगे, कलयुग के जीव तो कल करेंगे, हम आज कुछ नहीं करेंगे। तो कलयुग के जीव होने के कारण ये यहां से बॉम्बे सिटी जाएंगे, मुंबई सिटी दूर थी उस समय, और बॉम्बे जाएंगे सिटी में, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, ट्रैफिक जाम, और क्यों, ताकि कुछ पैसा अर्जित करें और उससे क्या पिए, सिगरेट पिए, शराब पिए और सिनेमा देखें, मांस खाएं, इसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। लेकिन सत्वगुणी भोजन खाकर इनको कहो भजन कर लो, छोड़ दो सब कुछ, तो छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हर एक व्यक्ति पर कृपा करना चाहते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने ये इच्छा जताई कि है ना, प्रभुपाद जब बॉम्बे में ही थे, कि मैं ना सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, अब ये जो भक्तों का समूह मुझसे घिरा रहता हूं हमेशा, मुझे वो वृंदावन के दिन याद आते हैं जब मैं राधा दामोदर मंदिर में रहता था, बिल्कुल अकेला शांत वातावरण। अब ऐसा होता है कि मैं माला कर रहा होता हूं तो भक्तों की संख्या लग जाती है, लंबी लंबी कतार प्रभुपाद के दर्शन करने, प्रभुपाद के दर्शन करने। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ त्याग कर सॉलिट्यूड अकेला जाऊंगा, भजन करूंगा कुछ समय, सारे भक्तों को त्याग दूंगा और अकेला जाकर भजन करूंगा। तो ये बात अभी वो बोली रहे थे, अपने जो निजी सेवक थे उनका नाम था सत्य स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद लीलामृत लिखा है, तो उनसे वो बोली रहे थे। इतने में एक लेटर आया, एक चिट्ठी आई उनके पास में, तो उसमें एक प्रभु जी थे जिनका नाम था भगवान दास, और वो यूरोप के जीबीसी थे, यूरोप कंट्री के, यूरोप पूरे एरिया के। तो उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था कि प्रभुपाद जी आपका हम निमंत्रण देना चाहते हैं और हमने यहाँ सारी प्रवचन की तैयारी कर दी है, तो आपको पहले रोम आना है, उसके बाद आपको जिनीवा आना है, फिर पेरिस, उसके बाद जर्मनी, और इन सब स्थानों में आपके प्रवचन तैयार हो गए हैं। तो अब भक्त जो है ना प्रभुपाद जी की तरफ देख रहा था, भक्त बोल रहे थे हमने देखा, प्रभुपाद जी 2 मिनट सोचते रहे। अब उनका अपना निजी इच्छा क्या थी, वृंदावन में अकेले वास करने की, लेकिन उन्होंने क्या चुना, यूरोप जाना। ये होता है भक्त, ये होता है भक्त। जब प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला प्रचार करो पाश्चात्य देशों में, तो मेरी निजी इच्छा कहां से आ गई अकेले जाने की, निजी इच्छा नहीं आनी चाहिए, जो आ रही है अकेले घूमने की, मैं चलो एक आदमी को लेकर वृंदावन घुमाऊं, तो ये व्यक्ति भक्त बना भी नहीं है, अभी बनने की कगार पे भी नहीं है, नहीं बना है। आप सोच के देखिए ना, कहां आपसे बनेगा, जब प्रभुपाद जी अपनी इच्छा प्रभुपाद होकर आचार्य होकर छोड़ सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे क्या करना है, प्रचार करने जाना है। हर एक व्यक्ति को प्रचार करने में तत्पर रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने फिर चुना, और इतने ही समय में उनको एक और चिट्ठी प्राप्त हुई जिसमें उन्हें ऑस्ट्रेलिया की रथ यात्रा के लिए बुलाया गया था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों स्थानों की रथ यात्रा का निमंत्रण भी प्रभुपाद के पास था। तो प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी सत्य स्वरूप दास गोस्वामी महाराज को बोला कि ठीक है, चुनो जल्दी से कि हम लोगों को अब निकलना है, पहले यूरोप जाएंगे, फिर अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वृंदावन नहीं जाएंगे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और हम लोग तो क्या है, अरे प्रचार करने कहाँ जाएंगे, रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रोज प्रचार, रोज फंड कलेक्शन, रोज 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 वही, चलो थोड़ा सा मैं आराम करके आते वृंदावन जाते हैं, तो हम भक्त हैं कहाँ, एक्चुअली हम चीटर्स हैं। श्रील प्रभुपाद जी के निजी सेवक जो सत्य स्वरूप महाराज थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं बस अपना ये सेक्रेटरीशिप छोड़ना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हो गया हूं, हर टाइम बर्तन उठाओ, हर टाइम ये उठाओ, हर टाइम वो उठाओ। और प्रभुपाद जी तो हर वक्त खुद प्रचार करते हैं, और कि कहते हैं प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं कभी प्रचार नहीं करता हूं। बड़े बड़े भक्त आते हैं, महाप्रसाद मैं देता हूं, चले जाते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, चले जाते हैं, और मेरे को इतने वर्ष बीत गए, मैं तो निजी सेवक हूं, कभी पांव दबा रहा हूं, कभी मालिश कर रहा हूं, कभी पानी की बाल्टी भर रहा हूं, ये क्या प्रचार थोड़ी कर रहा हूं, मेरा जीवन तो गया, व्यर्थ चला गया। और जबकि सत्स्वरूप महाराज यंग थे और प्रभुपाद जी तो 70 साल के थे, तो प्रभुपाद जी समझ गए अपने भक्त की इच्छा, वो बोले कि हाँ इसका मन है कि ये सेवा को त्यागना चाहता है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत अपने जो सबसे पुराने सेक्रेटरी थे नंद कुमार प्रभु, तो उनको बुलाया, वो 1967 या 68 मतलब स्टार्टिंग के वर्षों में प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी रहे नंद कुमार प्रभु। उसके बाद फिर आ गए थे श्रुति कीर्ति प्रभु और वैसाखी प्रभु, फिर बाद में सत्य स्वरूप गोस्वामी प्रभु महाराज आए। तो उसके बाद में सत्य स्वरूप जब महाराज जाना चाहते थे तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है नंद कुमार को बुलाओ, बहुत समय हो गया, वो मेरी सेक्रेटरीशिप करेगा और तुम वापस अमेरिका चले जाओ और तुम वहां पे जीबीसी जोन भी हो, जीबीसी बन जाओ और वहां जाके प्रचार करो। तो सत्स्वरूप महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, अब तो बस जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहे थे, हो गई मुक्ति। अब देखिए भक्त ऐसे होते हैं, सेवा जैसे ही छूटते बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे मुक्ति। कितने कितने वर्षों ब्रह्मांडों में हमने अनेक अनेकों जन्मों में प्रार्थना करी है कि हमें अपनी सेवा में लगाओ, हमने जप किया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कैसे लगाएंगे? भगवान ऑल्टर से उतर के आएंगे, आओ मेरी सेवा में लगो, ऐसे अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और कहते हैं सेवा करो। तो हमारे गुरु आचार्य प्रभुपाद जो बोलते हैं वही तो सेवा होती है, और क्या, भगवान वही तो चाहते हैं हमसे, लेकिन हम हरे कृष्णा बोलते हैं लेकिन हम तुम्हारी सेवा करना नहीं चाहते हैं, ये वाली बात है। मेहमान को घर पे बुलाते हैं, आइए आइए आपको घर पे, और जब वो घर आता है तो ताला डाल के घूमने निकल जाते हैं। तो वही हमारा, इसीलिए तो हमारे को भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, हम आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं। तो सत्स्वरूप महाराज जो थे उन्होंने सोच लिया था कि अब वो सेक्रेटरीशिप छोड़ देंगे, और प्रभुपाद भी जानते थे कि ठीक है जाओ, बैक पैक कर रहे हैं। और नंद कुमार प्रभु को कहा कि थोड़े दिन के लिए इनको ट्रेनिंग दे दो क्योंकि इनको बहुत समय हो गया है। तो नंद कुमार प्रभु जो थे वो फूले हुए थे, वो बोले मैं कर लूंगा, तुम अपनी पैकिंग करो। तो वो पैकिंग कर रहे थे और प्रभुपाद जी के पास एक घंटी होती थी, टंग टंग, उस समय बैल नहीं थी तो घंटी बजाते थे, तो भक्त को दौड़ करके आना होता था, दंडवत प्रणाम करना होता था, पूछना होता था जी गुरुदेव जी, जी स्वामी जी, या फिर जी प्रभुपाद जी, और फिर प्रभुपाद अपना ऑर्डर देते थे। तो नंद कुमार प्रभु के लिए घंटी बजाई गई, सत्स्वरूप महाराज को सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बोले मैं तो हूं ही नहीं अब सेवा में। तो ये देखो भक्त ऐसे भी होते हैं, घंटी बज रही है अगर गुरु बुलाए, अगर मान लो कि सेक्रेटरी नहीं है तो हम भी तो सेक्रेटरी है उनके, हम निजी सेवक नहीं है गुरु के, हमें दौड़ कर जाना चाहिए अगर उनका सेवक नहीं है तो, अपनी सेवा करने के लिए। अगर मंदिर में माला देने के लिए या कुछ देने के लिए कोई भक्त नहीं है तो हर एक भक्त का कर्तव्य है कि वो सेवा करने के लिए दौड़े। तो दौड़े दौड़े नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। और इधर से नंद कुमार प्रभु भी भूल गए कि मैं जो हूं अब आजकल सेक्रेटरी बन गया हूं, तो वो भी अब प्रभुपाद घंटी बजाए वो सुन ही नहीं रहे। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आर यू स्लीपिंग, प्रभुपाद जी ने पूछा, नहीं नहीं प्रभुपाद गलतियों के सुनाई नहीं दिया। तो ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ, और फिर जो माताएं हिंदी बोलती थी तो नंद कुमार प्रभु उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, अंग्रेजी भाषा में ही बात करते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और उनको इतनी भी प्रॉब्लम थी, सब्जी काटने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि तो चाकू नहीं मिलता था उनको, तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मैं ये चाहता हूं कि वापस सत्स्वरूप महाराज जो है वो सेक्रेटरी बन जाए, लेकिन मैं उसको कह नहीं सकता हूं, उन्होंने नंद कुमार प्रभु को बोला। तो जो प्रभु जी थे उन्होंने रात्रि में सत्स्वरूप महाराज को बुलाया और पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है प्रभुपाद जी की सेवा छोड़ के, उनकी निजी सेवा छोड़ के। तो बोले अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा वपु सेवा से बढ़कर वाणी सेवा है, तो अब मैं उनकी वाणी जो है प्रचार की वो लेकर पाश्चात्य देशों में अमेरिका में प्रचार करूंगा, यूनिवर्सिटी जाऊंगा और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करूंगा, मैं बड़ा खुश हूं उत्साहित हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभुपाद जी बहुत बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, और कुछ वर्षों में वो अपनी लीलाएं प्रकट कर देंगे, तो तुम्हें ये निजी सेवक की सेवा नहीं मिल पाएगी, और तुम तो अभी यंग हो, बहुत ही युवा हो, पूरा जीवन पड़ा है तुम्हें प्रचार करने के लिए, है ना, तो तुम जब प्रचार करोगे और तुम निजी सेवक के रूप में जब सेवाएं कर चुके होगे तो तुम्हारे प्रचार की शक्ति अलग होगी। तो उन्होंने ये सारी चीजें उनको बताई, तो उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा ठीक है मैं फिर प्रभुपाद जी की सेवा ज्वाइन कर लेता हूँ वापस। और फिर उन्होंने जाकर प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभुपाद जी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिएगा, मैं आपका सेवक बनने को दोबारा से तैयार हूँ। तो इस तरह से भक्त जो होते हैं वो सेवाएं छोड़ना चाहते हैं लेकिन कृष्ण अरेंजमेंट करते हैं, कृष्ण सब बना के रखते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है ना। भक्त अपना अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे एक और पास टाइम बता के समाप्त करेंगे, ऑलरेडी समय हो गया है। जैसे एक भक्त थे वो बता रहे थे कि सारे के सारे भक्तों के अंदर ना दीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा जद्दोजहद होती है, और जिनकी हो जाती है वो तो अपना वो पता नहीं क्या डॉन के बाद अपना नंबर या फिर जेम्स बॉन्ड के बाद अपना नंबर समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत धाम जाना दीक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कोटेशन में लिखा है इनिशिएशन इज जस्ट ए फॉर्मैलिटी। अ डिवोटी हु इज सरेंडर्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज इनिशिएटेड। उस दिन ही भक्ति में इनिशिएट मतलब भक्ति में शुरू होना। तो जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू किया या शास्त्र पढ़ने शुरू किए तो आप दीक्षित हैं और आपने ये प्रण लिया कि मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। नाम बदले ना बदले क्या है, लेकिन हम सेवा करें ना करें हमारी इच्छा सिर्फ नाम बदलने की होती है। तो दीक्षा सेरेमनी को एक्चुअली बोल देना चाहिए नेम गिविंग सेरेमनी, नया नाम, नए नाम की दौड़ है। जिसका नया नाम है वो व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, और जिसका नाम नहीं बदला है वो अपने आप को बड़ा दीनहीन मानता है तब तक जब तक नाम नहीं बदल जाता। ये एक्चुअली है। तो इसी तरह से अब एक भक्त बता रहे थे कि जब दीक्षा हो जाती है उसके बाद फिर एक कॉम्पिटिशन चलता है ब्राह्मण दीक्षा का। अच्छा अच्छा आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है, ओह अच्छा अच्छा आपकी हो गई है, ओह आप तो बड़े भक्त हैं। एक्चुअली इसका भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। जिसको ब्राह्मण की सेवा करने के लिए गुरु बोलना चाहते हैं उसको ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं। कई ऐसे भी भक्त होते हैं जो कि दीक्षा भी नहीं लिए ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं लिए, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप तो है ना गोपी भाव प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। जॉर्ज हैरिसन उन्होंने कोई दीक्षा भी नहीं ली, उन्होंने कोई ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन फिर भी वो भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उनको ये जाएंगे क्योंकि ये हरि के सन है, हरि के बेटा हरि सन है ना, जॉर्ज हरि सन। तो आप हरि के बेटे हैं, आपको क्या जरूरत है दीक्षा लेने की। आपने तो उन्होंने क्या किया अपनी जितनी भी कमाई थी उससे जो बड़ा एक पैलेस खरीदा था भक्ति वेदांत मैनर वो इस्कॉन को दान दे दिया पूरा का पूरा। आप सोचिए अपनी गाड़ी कमाई से 2-3 करोड़ रुपए का द्वारका में मकान खरीदे और आपके गुरुदेव आए और आप उनको कहें मैं सेंटर खोलने के लिए आपको दान देता हूं और मैं किराए पे रहूंगा, तो फिर उस व्यक्ति को दीक्षा की जरूरत है। और दीक्षा लेने के बाद भी अपने अपने घर बनाने में लगा हुआ है वो आदमी दीक्षित है तो फायदा नहीं है उसका। तो वो व्यक्ति जो विनम्रता से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रख सकता है वो एक्चुअली दीक्षित अपने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है ना। प्रभुपाद जी कैसे जूते पहनकर जा रहे हैं, प्लास्टिक के जूते पहनकर अमेरिका जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए, स्टाइलिश जूते चाहिए, सॉक्स चाहिए, वूलन ये वो सब कुछ। हम भक्त थोड़ी है एक्चुअली, हम तो प्रभुपाद जी ने जो मेहनत करी है ना उसका प्रसाद खा रहे हैं बैठ करके मजे से ड्राई फ्रूट्स। जैसे पिताजी मेहनत करते हैं और बच्चे खीर बादाम खाते हैं और बड़े खुश होते हैं, हम फेस्टिवल मना रहे हैं है ना। तो हम तो वो सेवा कर ही नहीं पा रहे जिस तरह से प्रभुपाद जी ने करी है, प्रभुपाद जी के भक्तों ने करी है, वो है एक्चुअली भक्ति। तो भक्त जो बोल रहे थे मुझे भी बड़ा कॉम्पिटिशन रहता था मेरी ब्राह्मण दीक्षा कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी। तो एक दिन आ गया कि प्रभुपाद ने कहा आपकी ब्राह्मण दीक्षा होगी, तो वो बड़े खुश हुए आप मेरी भी दीक्षा होगी, बैठ गए और अब मेरा सीक्रेट मंत्रा मिलेगा। कब मेरा वो गुह्यतम मंत्र मुझे मिलेगा, गुप्त मंत्र मुझे मिलेगा गुरु के द्वारा कानों में, और इंतजार कर रहे थे। और एक दिन गुरु ने बुलाया, प्रभुपाद जी ने उनके कान में एक मंत्र दिया और एक यज्ञोपवीत जनेऊ धागा उनके गले में डाल दिया और कहा आज से तुम हो गए ब्राह्मण दीक्षित। अब तो हवा में 2 कदम 2 इंच ऊंचा ऊंचा चलने का मन करता था, मैं हवा में फ्लाई करता हूँ, मैं ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी, अब टॉप मोस्ट सर्विस में हूं मैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ है ना। तो दास भावना जा रही है ना उस व्यक्ति की, नाम के आगे लिखा है दास और अब उड़ रहा है हवा में, तो उसको उसको कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जैसे एक बार नारद मुनि वृंदावन में आए तो वो हवा हवा में उड़ रहे थे ऊपर से, जैसे नारद मुनि तो उड़ सकते हैं हवा में, हाँ तीनों लोकों में जा सकते हैं। तो एकदम नीचे देखा तो उनको कृष्ण दर्शन ही नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अनेक देवताओं से कहा जो उनके साथ थे कि मुझे तो कृष्ण का दर्शन ही नहीं हो रहा, सुना है वृंदावन में कृष्ण अवतार लिए हैं, अपने स्वरूप में आए हैं, स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। तो जब नीचे उतरे तो उन्होंने फिर आकर कृष्ण भगवान से कहा, भगवान जब मैं ऊपर था तो मुझे आपका दर्शन ही नहीं हो रहा था, जब मैं नीचे आया तब मुझे फिर आपका दर्शन हुआ। तो फिर भगवान ने कहा कि जो लोग हवा में रहते हैं उनको दर्शन होता ही नहीं, जब नीचे उतरते हैं ना तभी दर्शन होता है एक्चुअली, विनम्रता की स्थिति में दर्शन होता है। विनम्रता की स्थिति में फिलॉसफी अंदर जाती है वरना जाती नहीं है। जो लोग हवा में रहते हैं वो नामी ग्रामी हस्ती बन सकते हैं लेकिन भक्त नहीं बन सकते। हिजोलिनस राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं, You can be a temple president, you can be a GBC, you can be an initiating guru, but till the time you don't develop humility, Krishna will not accept you. जब तक विनम्रता नहीं है कृष्णा आपको अपने धाम में प्रवेश नहीं देंगे। तो जितना कुछ किया श्रम ए भी केवलम, सब व्यर्थ चला जाएगा। देखिए तो इस तरह से वो भक्त जो थे उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल गया। दूसरे दिन स्नान करने के लिए गए तो स्नान कर रहे थे, ब्रह्मचारी थे, स्नान कर रहे थे, पानी की बाल्टी उठा के डाली तो जनेऊ भी बह गया और मिट्टी का स्थान होता था तो मिट्टी में कहीं जनेऊ चला गया। अब वो सोचने लगे कि अब मैं जनेऊ तो है नहीं, गायत्री मंत्र कैसे जप करूंगा, और जाकर प्रभुपाद से कहूं कि दूसरा दे दो, कहेंगे कल ही तो दिया था, इतना मूर्ख शिष्य है, आज जनेऊ गुम कर दिया, और वो मिट्टी खोद रहे ढूंढ रहे कहीं जनेऊ नहीं मिला, और अब तो प्रभुपाद जी का जपा हुआ जनेऊ था, अब कहां से मिलेगी वो कृपा, सोच रहे तो उनको दिमाग, भक्त चतुर होते हैं ना, छल करने की आदत, चीटिंग प्रोपेंसिटी गुरु से भी, तो उन्होंने कहा, भक्त बोल रहे थे, मैं सोचने लगा कि सबसे अच्छा तरीका है, प्रभुपाद जी हर महीने अपना जनेऊ बदलते हैं पूर्णमासी के दिन, कुछ भक्त एकादशी पे बदलते हैं और कुछ भक्त पूर्णमासी पे, तो प्रभुपाद जी पूर्णमासी पे चेंज करते थे, तो बोले वो चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद वो टेबल पे रख देते हैं और फिर दूसरा जनेऊ धारण करते हैं, तो जब वो अपना जनेऊ रख देंगे तो बस मैं अब की बार उनका जनेऊ चोरी कर लूंगा और पहन लूंगा, और प्रभुपाद जी का डेली जपा हुआ जनेऊ मिल जाएगा उनकी बॉडी का रेमनेंट। अरे अरे मजा आ गया, अब मैं दिव्य बन जाऊं, क्या दिमाग, भगवान थैंक यू आपने मुझे बुद्धि दे दी, ददा में बुद्धि योगमतम, वाह वाह आपने बुद्धि दे दी, भगवान बोल। लेकिन कुछ ही समय बाद वो दिन आया पूर्णमासी का, और वो प्रभुपाद जी का वेट कर रहे थे, प्रभुपाद जी कब अपने जनेऊ के लिए बुलाएंगे मुझे कि जाओ ये जनेऊ फेंक दो, तो फेंकने के लिए देते हैं ना पुराना जनेऊ, इसको इसका विसर्जन कर दो जड़ में, मिट्टी के में, या फिर पानी, बहते हुए पानी में। तो भक्त बाहर बैठ कर वेट करके जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने में प्रभुपाद जी की आवाज आई, प्रभुपाद ने बुलाया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जी प्रभुपाद, बोले ये मैं जनेऊ यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, और इसको तो मैं ना विसर्जन कर देना, मैं जब मैं टहलने जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक सैर करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपनी छड़ी उठाकर मॉर्निंग वॉक पर चले गए, और भक्त ने आंखें खोली नहीं रहा, वाओ व्हाट अ डिवाइन डे, कितना दिव्य दिन है आज, आज मुझे प्रभुपाद जी के शरीर का जनेऊ धारण करने का मौका मिलेगा। और उन्होंने जैसी आंखें खोली तो उनको हार्ट अटैक लग गया। वो जनेऊ का दो तरीके होते हैं उतारने के, एक उतारने का होता है कि हम जनेऊ उतार दें और फिर दूसरा जनेऊ धारण कर लें, है ना, एक तरीका ये होता है कि हम इधर से एक जनेऊ धारण करें और इधर से लेफ्ट बॉडी से उतारें और उसके एक एक धागे को तोड़ दें, है ना, और फिर उसको बोल दें समुद्र गच्छम या फिर विसर्जामी जो भी कहते हैं, तो उसके बाद में वो उतार दें। तो प्रभुपाद जी ने आज दूसरे तरीके से उतारा था, हर बार ऐसे उतारते थे उतार के दूसरा धारण करते थे, आज प्रभुपाद जी ने ऐसे धारण किया और इधर से उतार के तोड़ दिया था धागे उसके। तो बोले मेरी सारी इच्छाएं उस धागे के टूटने से टूट गई थी, लेकिन फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान ने फिर बुद्धि प्रदान की और सोचा गांठ बांध कर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने सारे में बैठ के एक में गांठें बांधी और बांधने के बाद उसको पॉकेट में रख ही रहे थे, इतने में प्रभुपाद जी वापिस आ गए शहर से, और प्रभुपाद जी ने कहा, तुम कैसे शिष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते हो, अभी तक इसको तुमने विसर्जन नहीं किया है। तो बोले अभी तो मुझे बोलना पड़ा कि जी प्रभुपाद अभी मैं जा रहा हूं, और मैं दौड़कर गया, मैंने मिट्टी की एक्टिंग करी और फिर उसको धारण करके वापस आ गया, है ना। तो भक्त प्रभुपाद जी का जो बचा हुआ बचे हुए निर्माल्य होते थे उसके लिए जीवन जीते थे। तो इस तरह से कुछ पाने के लिए बोले मैंने झूठ बोला, भक्त बोले थे मैंने झूठ बोला अपने जीवन में, लेकिन जो देखा जाए तो प्रभुपाद जी की कृपा पाने के लिए, प्रभुपाद जी के एक एक अंश को पाने के लिए भक्त किस तरह से अपना जीवन जिए, है ना। तो आप सोचिए कि प्रभुपाद जो राधा दामोदर मंदिर में अकेले जब रहते थे तो उन्होंने कभी सोचा था कि हजारों लोग विदेशों में मुझे फूल चढ़ाएंगे, मेरे लिए गुरु पूजा गाएंगे, ऐसा नहीं सोचकर गए थे। वो सिर्फ सोच कर गए थे मुझे कृष्ण का प्रचार करना है, और इसलिए आज भी लोग उनके लिए जान देने को तैयार है। आज भी जो परिवर्तन आ रहा है ना पूरे विश्व में, वो हमारे कारण नहीं है, प्रचारकों के कारण नहीं है, वो प्रभुपाद जी के कारण है, उनके ग्रंथों के कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसा भक्त बनने के लिए हमें प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, आज एकादशी के दिन प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी इसी प्रकार की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। पंचतत्व गौरनिताय की जय। पतिता पावन श्रील प्रभुपाद की जय। अमाला एकादशी महोत्सव की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।